भाव दीपिका लेक्चर नंबर 5।
ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम नमः सिद्धेश्वर, ओम शुद्धात्मने नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयरियानं, नमो वज्जायानं, नमो लोए सर्वसामूनं, स्वभाव विभाव परभावको ज्ञाता सम्यक ज्ञान ताकाधारकता सुपुनि नमो चित्त धरी ध्यान।
यह भाव दीपिका नामक ग्रंथ है जिसकी रचना पंडित श्री दीपचंद जी कासरीवाल ने की हुई है। उसमें जीव के जो 5 असाधारण भाव है उनको बहुत विस्तार से उन्होंने समझाया है। 5 भाव के नाम बताएंगे नलिन भाई?
पारिणामिक,
औदायिक और इनके उत्तर भेद हमने किए थे। पारिणामिक के कितने थे? 3 भेद, जीवत्व, भूवत्व, अभूवत्व। औदायिक के 21 भेद। मुख्य मुख्य बताएंगे? गति 4, आशय 4, वेद 3,
लेशा
6,
अज्ञान, असंयम,
मिथ्यात्व, अज्ञान, असंयम और असिद्ध। ये हमने औदयिक के 21 देखे। फिर क्षौषमिक के 18 भेद है, उसमें उन्होंने 10 तो उपयोग बताए। 3 मिथ्या ज्ञान यानी कुज्ञान, 4 सुज्ञान और दर्शन में 3 लिए। फिर 5 लब्धि, सायसमी सम्यक्त्व, क्षौषमी चारित्र और सहिमा से। वो कहाँ होता है, किसके होते हैं, उसकी चर्चा अभी विस्तार से एक एक भाव की आएगी तभी होगी। यहाँ तो हम थोड़े उसको दोहरा रहे हैं, दोहरा के हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने औदयिक के भी देखे और क्षौषमिक के भी देखे। औषमिक भाव कौन से है सुशीला बेन? औषमिक भाव कितने हैं और कौन से? औषमिक सम्यक्त्व और औषमिक चारित्र। उसके बाद कौन रहेगा अभी? क्षायिक भाव। जीतू भाई, क्षायिक भाव कितने याद है? क्षायिक भाव नहीं, नौ। हाँ, कौन से कौन से? आपको ऐसा रखना याद कि देखो, पहले में पहले ज्ञानावरण का क्षय से केवल ज्ञान, केवल दर्शन। हाँ नहीं, क्षायिक सम्यक्त्व, क्षायिक चारित्र और फिर वो 5 भाव। क्योंकि हम क्रम से ज्ञानावरण कर्म, दर्शनावरण कर्म, मोहनीय कर्म और अंतराय कर्म, इनके जो क्रम है वैसा सोचना उसका। कौन कौन से कर्म के नाश से क्या क्या होता है वो बात हमने ख्याल लिया कि। अब हम आगे बढ़ते हैं क्षायिक भाव 9। तो इस तरह से हमने 53 भेद देखे। ये सभी भावों के 53 भेद देखे। उसमें हमने देखा था जीवत्व तो जीव का स्वभाव है, उसका जो पारिणामिक भाव जीवत्व नाम का है वो उसका चेतना भाव है। वो चेतना भाव के हमने 8 प्रकार से उसके, सॉरी 6 प्रकार से उसका वर्णन देखा था। क्या क्या देखा था? देखो पेज नंबर 6 पर क्या क्या देखा था हमने। चेतना भाव कैसा है बोलो? हाँ हाँ बोलो। स्वगर प्रकाशी, हाँ, शाश्वत है, जीव का अपना स्वरूप है, जीव का असाधारण भाव है, अन्य द्रव्य में नहीं है, मात्र जीव द्रव्य में है। फिर उसके बाद जीव का प्राण है, सभी अवस्थाओं में व्यापक, क्योंकि इससे रहित कभी जीव नहीं होगा। जीव की कोई भी अवस्था हो तो उसका जानन देखन, जानन देखन, उसका जो स्वभाव परिणमन है वो तो चलता ही है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो ये जीवत्व की तो बात हमने देखी है, अभी हम यहाँ भव्यत्व अभव्यत्व की बात चल रही थी अपनी। मूल में यह है कि भव्यत्व और अभव्यत्व की इसकी बहुत अच्छी तरह से उन्होंने अलग टाइप से परिभाषा बताई है। भव्यत्व यानी जिस किसी गुण की बात कर रहे हो। देखो हम तो भव्यत्व यानी जो सिद्ध होने के यानी सम्यक्त होने के लायक ने उसकी बात की, यहाँ तो कहते जिस किसी गुण की बात कर रहे हो तो उस गुण में विशिष्ट उसकी पर्याय रूप होने की योग्यता ही नहीं है, उसको अभव्यता। यहाँ तो ये बात बताई कि जीव कभी स्पर्श रस गंध वर्ण की पर्याय रूप से परिणमित ही नहीं होगा, तो परभव के लिए उसको वो अभव्य है। यानी जीव काला गोरा कभी हो ही नहीं सकता, काला गोरा होने के लिए वो अभव्य है ना। ये बहुत अच्छी तरह से उन्होंने समझा है। तो परभाव के लिए तो सभी जीव जो है वो अभव्य। क्या कहा? परभाव रूप परिणमने के लिए सभी जीव अभव्य, यानी वो कभी भी परभाव रूप से परिणमन नहीं कर सकते। ये जो पुद्गल के जो गुण जो है उसके जो पर्याय है जो हमें इंद्रियों के द्वारा जाने हम जान सकते हैं वो सब क्या है, तो प्रभाव है। जीव उस रूप कभी भी तीन काल में नहीं हो सकता, ये बात उन्होंने पहले में पहले घटित थी। अब यहाँ नीचे से जो दूसरा पैराग्राफ है बड़ा, उसको हम पढ़ेंगे 8 नंबर के पृष्ठ पर, ऊपर से तीसरा पैराग्राफ। ताही तई यानी उसी लिए जे सर्व 53 भावन विषय अभव्यत्व भाव बिना अवशेष 52 भाव रूप बाह्य निमित्त कारण के मिलत संते परिणमेंगे ते तो भव्य जीव कहिए। यानी जो उस रूप नहीं परिणम सकता वो अभव्यत्व हुआ। ऊपर जो भव्यत्व की बात है ना उसकी भी बात पढ़ के फिर मैं ये यहाँ क्या कहना चाहते वो बताऊंगा। तो प्रभाव के लिए तो अयोग्य है। अब ऊपर के पैराग्राफ में मैं चौथी लाइन से पढ़ूंगी, 8 नंबर पृष्ठ पर दूसरा पैराग्राफ चौथी लाइन। जो जीव के 53 स्वभावन विषय 3 भावन रूप भविष्यत काल विषय निमित्त पाए परिणमेगा, अतीत काल विषय परिणया और वर्तमान काल विषय परिणमे है ते तो ती जीव के भोगे तो भाव है। यानी जिस भाव रूप से वो परिणम सकता है वो क्या है, उसके भोगे तो है। और 53 भावन विषय 3 भावन रूप न परिणया न परिणमेगा न परिणमे ते तीस जीव के अभोवे तो भाव। किसी विशिष्ट जीव में विशिष्ट पर्याय रूप से वो नहीं परिणमा तो वो उसके लिए अभोव्य, और जिस रूप से वो परिणमेगा या परिणमा था उसके लिए वो भोग्य। अब आगे का पैराग्राफ यहाँ से पढ़ेंगे कि जे सर्व 53 भावन विषय अभोवत्व भाव बिना अवशेष 52 भाव रूप बाह्य निमित्त कारण के मिलत संते परिणमेंगे, यानी अन्य अभव्यत्व को छोड़कर बाकी जो है उस रूप जो परिणमेंगे ते तो भोग्य जीव कहिए। परिणमेंगे कहा है ना, और जे 53 भावन विषय एक तो भव्यत्व पारिणामिक भाव और क्षयोक्षमिक भाव विषय मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान और मनोपरि ज्ञान, ये 4 तो ज्ञान पूरा पढ़ेंगे फिर इसको एक एक करके समझाऊंगे। और अवधि दर्शन क्षयोक्षमिक सम्यक्त्व क्षयोक्षमिक चारित्र देश संयम ये 8 भाव और 2 औक्षमिक और 9 क्षायिक भाव, इन मोक्ष के कारण 20 भावन रूप बाह्य निमित्त मिलने ते भी न परिणमेंगे तब हो बीजे। क्या कहना चाहते हैं? मोक्ष के कारणभूत भाव कौन कौन से उसकी चर्चा कर, तो इसका अर्थ क्या है? जब से सम्यक दर्शन प्रकट हुआ है तब से लेकर मोक्ष अवस्था तक के सभी भावों को हम गिनेंगे वो अभव्य जीवन को कभी नहीं होगी। ये बहुत अच्छी तरह से, तो सबसे पहले में पहले अनादि का मिथ्या दृष्टि है, अब तक उसको सम्यक तो नहीं हुआ है और वो सम्यक तो प्राप्त करता है, तो कौन सा भाव प्रकट होता है? औक्षमिक भाव प्रकट, औक्षमिक सम्यक तो प्रकट होता है उसको। तो यहाँ क्या क्या लिखा देखो, 2 औक्षमिक भाव यानी औक्षमिक सम्यक तो, और दूसरा औक्षमिक भाव कौन सा है? औक्षमिक चारित्र, वो तो श्रेणी का है। ये 2 भाव, फिर और क्यों क्या कौन से जब वो समय दृष्टि होता है तो उसका जो ज्ञान है वो सम्यक ज्ञान हो जाता है। तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, किसी किसी को अवधि ज्ञान भी रहेगा, किसी किसी को मनोपर्य ज्ञान भी रहेगा। जो अभव्य है वो कभी सम्यक तो ही नहीं प्राप्त करेगा, तो वो औक्षणिक वाले भी नहीं होंगे उसके, और ये चार सम्यक ज्ञान भी उसको कभी नहीं हो सकते। तो ये चार भाव हो गए, दो औक्षणिक भाव, चार दो छह हो गए। अब अवधि ज्ञान है तो अवधि दर्शन भी होगा, तो ये एक उसमें इंक्लूड करना। यह मति, ये चक्षु चक्षु दर्शन को नहीं लिया क्योंकि वो तो मिथ्या दृष्टि के भी होते, उसमें सम्यक मिथ्या कोई बात नहीं होती। क्या कहा? ये जो चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन है उसमें सम्यक दृष्टि के सम्यक तो चक्षु दर्शन होगा, ऐसा नहीं है। वो तो सामान्य अवलोकन है ना, उसमें मिथ्या नहीं लगता, अवधि दर्शन में लगता है, क्योंकि उसमें विभंग ज्ञान में अवधि दर्शन नहीं होता। जो सम्यक अवधि ज्ञान है उसके साथ अवधि दर्शन होता है। अभी तो सुन लो, क्यों नहीं होता क्या, उसकी चर्चा आपको समझ में आएगी थोड़ी कालांतर से। अभी तो हम क्या, ये जो अभव्य जीव है वो कभी सम्यक को ही नहीं प्राप्त करेगा, तो ना उसको ये औक्षमिक दो भाव हो गए, फिर ये चार सुज्ञान भी उसके नहीं हो गए। आगे कहते हैं कि अवधि दर्शन भी नहीं होगा, फिर आगे क्षौक्षमिक सम्यक को नहीं होगा, औक्षमिक भी नहीं होगा, क्षौक्षमिक भी होगा, आगे तो शायद भी होंगे। अभी तो क्षौक्षमिक भाग इंद्र, क्षौक्षमिक चारित्र जो छठे सातवें गुणस्थान वाले मुनियों को होता है वो भी नहीं होगा। देश संयम यानी पांचवा गुणस्थान भी उसको कभी प्रकट नहीं होगा। अभी तो कितने गिने हमने, नौ, एक दस हो गए, और नौ क्षायिक भाव, और एक कौन सा रह गया, भव्यत्व पारिणामिक, देश संहित रह गया, एक भव्यत्व इटसेल्फ रहना। तो ये जो 20 भाव है बाह्य निमित्त मिलने से भी नहीं परिणमेंगे, बाह्य निमित्त मिलने पर भी ये अभव्य जीव कभी सम्यक तो प्राप्त नहीं करेगा, ये बात बताना चाहते, उसमें ऐसी योग्यता ही नहीं है। कल में आई बात, उसको अभव्य कहेंगे। जैसे अभी उसके लिए दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे घोड़ू मूंग, ये समझ में आता है ना, हमारे मूंग या मटकी जो होती है उसमें ऐसे कुछ होते हैं कि कितने भी होते हो ऐसे ही कड़क है, वो सींचते नहीं है, वो ऐसे ऐसे, हाँ, सॉफ्ट नहीं होते, उसको भिगाओ, उसको कुकर में डाल के पकाओ तो भी वो ऐसे के ऐसे रहते हैं। तो अभव्य के लिए उसकी उपमा दी, जैसे घोड़ू मूंग सहज ही ऐसी शक्ति को धारे है कि सीजने के कारण जल अग्नियादिक यानी जल अग्नि आदि बाह्य निमित्त मिलने तय भी न सीजे। ये जो रेगुलर जो हम कहते हैं जो अनाज होता है, धान होता है या मूंग है, मटकी है, जो कोई है, तो कहते हैं वो तो जल में भिगोते हैं, अग्नि से पकाते हैं तो पक जाते हैं, परंतु इनमें ऐसी शक्ति ही नहीं है। तो कहते सीजने के, सीजना यानी मराठी में हमने सीजने कहते हैं पकना, तो भी न सीजे। तैसे ये तो दृष्टांत हुआ, अभव्य जीव सहज ही ऐसी शक्ति को धारे है कि जो सम्यक्त्वादिक 20 मोक्ष के कारण भाव है, देखो मोक्ष के कारण भूत 20 भाव बताए, तिनके कारण, ये भावों के कारण भूत कौन है, बाह्य निमित्तों की बात है। तो कहते देव गुरु धर्मादिक मिलने ते भी, तीर्थंकर का उपदेश मिलने से तो ये हो गए कि नहीं, नहीं हो गए। तो कहते बाह्य निमित्त मिलने ते भी तीन रूप, तीन रूप यानी 20 भाव रूप सर्वदा सदा काल विषय भी न परिणाम, कभी भी नहीं परिणाम है। ते अभव्य जीव कहिए है ताहित है, यानी इसीलिए शास्त्र विषय ऐसा कहिए है, जे जीव भविष्यत काल विषय सम्यक दर्शनादि रूप परिणमेंगे ते भव्य जीव कहिए, भविष्य में जो होने योग्य है वो भव्य कहेंगे। और जो सम्यक दर्शन आदि, आदि में ये सब हमने जो 20 भाव देखे वो सब ले लेगा, भविष्यत काल विषय कदा काल भी न परिणमेंगे ते अभव्य जीव है। लास्ट जाके वो सिद्ध नहीं होंगे, परंतु पूरा मोक्ष मार्ग उनका कभी प्रकट नहीं होगा, उनको अभव्य कहेंगे। बाह्य कारण मिलने ते भी, जिन धर्म में जन्म लिया और फिर व्रतादि अंगीकार किए, बहुत शास्त्रों का अभ्यास किया फिर भी कहते उनमें ऐसी योग्यता ही नहीं कि वो सम्यक तो प्राप्त करें। तहा भव्य भाव तो चतुर्गति संसार का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण। क्या कहा? जिनमें भव्य भव्यत्व है तो क्या वो संसार में परिभ्रमण करते हैं कि नहीं करते? तो कहते जब तक समय दर्शन नहीं हुआ है अनादिकाल से वो भव्य जीव भी अभव्य जैसे ही पूरे ही चारों गतियों में घूम रहे हैं। जब तक वो समय तो प्राप्त नहीं करेंगे, अपना स्वरूप नहीं पहचानेंगे, तो भव्य क्या और अभव्य का ही जैसा है। तो कहते वो संसार का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण। उनमें ऐसी पात्रता है कि भविष्य में कभी वो मोक्ष प्राप्त करें। और अभव्य भाव संसार का ही कारण ही लगाया। अभव्य जीव एकमात्र संसार में नहीं, कर्म बंद करते रहते हैं, भोगते रहेंगे, वो चारों ही गतियों में घूमते रहेंगे, उसमें से उनके छूटने का बिल्कुल होगा ही नहीं, उनके पर्याय में ऐसी योग्यता ही नहीं है। सम्यक रूप परिणामी जे संसार के पार होंगे, होंगे की बात है, होने योग्य बताए ना, होंगे ते भव्य जीव कहिए। और सम्यक दर्शन आदि भाव रूप जे भविष्यत काल विषय कदा काल भी न परिणमेंगे ते अभव्य जीव कहिए। तो भविष्य में परिणमेंगे कि नहीं परिणमेंगे ये हम आप कैसे समझेंगे? तो मैं भव्य हूँ कि अभव्य हूँ, ऐसे हमको फोन भी आते कोई कोई। ये तो केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। उन्होंने जान लिया कि इस जीव में ऐसी पात्रता नहीं। और यहाँ तो मुनिराज पंचविंशति पद्मनंदी पंचविंशति में पद्मनंदी आचार्य लिखते हैं कि अपनी आत्मा की बात भी जो रुचिपूर्वक सुनता है वो निश्चित हो गए। तत्प्रतिप्रीति चित्तेन येन वार्ता कही श्रुता निश्चितम स भवेत भव्य भावी निर्वाण भाज। नजीक काल में वो मोक्ष प्राप्त करने वाला वो पात्र जीव। ताते अभव्य जीव मोक्ष को कदा काल विषय भी न प्राप्त होने, कभी भी प्राप्त नहीं होगा। अब ये तीन पारिणामिक भाव, रूमा कौन कौन से तीन पारिणामिक भाव देखे हमने? हाँ, दो भव्य अभव्य अभी देखे और अपना ही स्वरूप भूल गए। तुम कौन हो?
जीव।
जीवत्व, जीवत्व। ये तीन पारिणामिक भाव जिस जिस गुणस्थान और मार्गणास्थान विषय पाइए सो दिखाइए। अब ये गुणस्थान और मार्गणास्थान क्या है उसको जरा देखते हैं। गुणस्थान यानी जीव के पर्याय की बातें। जैसे जब तक सम्यक्त्व नहीं हुआ है तो सब जीव मिथ्यात्व नामक पहले गुणस्थान में पाए जाते हैं। अनादि से मिथ्यात्व गुणस्थान चल रहा है, पहला गुणस्थान। जब समय दर्शन होता है तो डायरेक्ट उसको चौथा गुणस्थान हो जाता है। फिर भी वो कैसे अवृत्ति है, अभी व्रतादि धारण नहीं है, अंतरंग में इतनी स्थिरता नहीं है, तो उसका नाम है चौथे गुणस्थान वाला असंयत समय दृष्टि, अविरत समय दृष्टि। जितनी स्थिरता बढ़ेगी तो उसके और अधिक अनुव्रतादि के अंगीकार करने के भाव भी होंगे बाह्य में, और अंतरंग में स्थिरता ज्यादा है। कषाय चौकड़ी हमने देखी ना, अनंतानुबंधी और प्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण संगत समय। मिथ्या दृष्टि को चारों कषाय चौकड़ी है, मिथ्या तो भी उसके साथ साथ। जब समय दर्शन हुआ तो मिथ्या तो चला गया, अनंतानुबंधी चले गए, तीन कषाय चौकड़ी रही है, तो ये चौथा गुणस्थान है या चौथा गुणस्थान प्राप्त हो। फिर और एक कषाय चौकड़ी चली गई, कौन सी? अप्रत्याख्यान, ऐसा पकड़ेंगे अप्रत्याख्यान। तो यहाँ देश से मैंने पांचवा गुणस्थान प्रकट हुआ और स्थिरता बढ़ी तो और एक कषाय चौकड़ी चली गई, तो यहाँ मुनि योग्य वितरकता हो गई, सकल संयम कहेंगे। और फिर ये संजोलन जो है वो भी निकल गया, तो फिर यथाख्यात चारित्र 11वां 12वां और 13वां गुणस्थान 14वां गुणस्थान प्रकट हो जाए। इसको कहते गुणस्थान। अभी केवल इतना ही सुन लो, जो भी उसका विशेष अभ्यास होगा तो उसकी चर्चा हम फिर कभी करेंगे। तो ये सभी कौन से गुणस्थान में जीव के कौन से भाव होते हैं उसकी यहाँ चर्चा चलेगी। और मार्गणास्थान किसको कहेंगे? गुणस्थान ने अभी इन जनरल बातें की ना, कोई पहला गुणस्थान वाला है, कोई चौथा पांचवा है, कोई छठे सातवें वाले मुनिराज है, ऐसे ये तो गुणस्थान है। मार्गणास्थान किसको कहना? तो जो सभी जीव है, संसारी जीव, उनको कोई एक क्राइटेरिया लगा के उनके हम ग्रुप्स करेंगे। जैसे लौकिक का उदाहरण देती हूँ, एक कैटेगरी लगाया हमने नेशनैलिटी, कौन से नेशन का है, तो कितने ग्रुप पड़ेंगे, कोई इंडियन है, कोई चाइनीज है, कोई जापानीज है, अफ्रीकन है, अमेरिकन है, जितने नेशन है उतने ग्रुप्स हो गए अलग अलग। अब हम उस क्राइटेरिया को भूल जाओ, हम दूसरा क्राइटेरिया लगाए कि क्या बिजनेस कर रहे हैं, डॉक्टर है कि इंजीनियर है, कि क्या प्रोफेशन क्या है उसका, प्रोफेशन वाइज उनको डिवाइड करना है। तो अभी पहले नेशन वाइज अलग अलग नेशन में थे, अब डॉक्टर कहने से सभी नेशन के डॉक्टर एक बाजू में आ, सभी नेशन के जो इंजीनियर है वो अलग हो गए, जो बिजनेसमैन है वो अलग ग्रुप में आ। तो क्राइटेरिया बदलने से ग्रुप्स भी बदल जाते, इसको कहेंगे मार्गणा। जैसे गति की अपेक्षा सभी संसारी जीव, आपको मालूम है ना गतियां कौन कौन सी है, एक तो नरक गति है, तिर्यंच गति है, मनुष्य गति और देवगति, ये चार गतियां। तो सभी संसारी जीव इन चार में कहीं ना कहीं वो फिट हो, हम आप कौन सी गति वाले मालूम है ना, मनुष्य गति। तो इस तरह से ये संसारी, अभी ये अपेक्षा से यहां जीव, जो प्योर जीव द्रव्य उसकी बात नहीं हो रही, संयोग में अभी हम कौन से गति वाले हैं, कैसे शरीर वाले हैं, कितने ज्ञान वाले हैं, कैसे कषाय वाले हैं, ये अलग अलग क्राइटेरिया लगेगी मार्गणाओं में, उसको कहेंगे मार्गणा के स्थान। स्थान का अर्थ है वेरिएशंस। तो एक हमने देखी गति मार्गणा, अब हम दूसरा क्राइटेरिया लगाएंगे कितनी इंद्रिय वाला जीव है, तो आप बताएंगे इंद्रिय, उसके इंद्रिय मार्गणा कहते हैं। मिली भाई, इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा सभी संसारी जीवों के कितने डिविजन्स हो गए, पांच, कौन कौन से, एक इंद्रिय जीव जिनके एक ही इंद्रिया है, स्पर्शन इंद्रिया, ऐसा नहीं कि एक इंद्रिय तो खाली कर्ण इंद्रिय है या खाली किसी को आंखें ही है, ऐसा नहीं है, उसी यानी सिक्वेंस से हो गए। आपको याद रखना है तो पूरे शरीर में स्पर्शन इंद्रिय, तो हम ऐसा कहेंगे स्पर्शन इंद्रिया, रसन इंद्रिय, ग्रहण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और कर्ण इंद्रिय। तो जब हम द्विइंद्रिय कहेंगे तो ये दो ही इंद्रिय होंगे, स्पर्शन इंद्रिय और रसन इंद्रिय। तीन इंद्रिय कहेंगे तो स्पर्शन इंद्रिय, रसन इंद्रिय, ग्रहण इंद्रिय। चार कहने से चक्षु भी आ गए और पांच इंद्रिय वाले ने कर्ण इंद्रिय वाले भी आ गए। फिर वो पांच इंद्रिय में हम तो इंद्रिय मार्गणा में इतना ही हम डिविजन करेंगे, उसके और जो सब डिविजन है वो अन्य अन्य मार्गणाओं में देखेंगे। तो ये तो बात हो गई, एक हुई गति मार्गणा, इंद्रिय मार्गणा, फिर उसके बाद काय मार्गणा। काय ने शरीर, कौन से शरीर वाले जीव है, तो काय की अपेक्षा कितने भेद होते हैं, सुशीला बेन याद है, हाँ, षटकाय। षटकाय ने पांच स्थावर काय, पृथ्वी कायिक, पृथ्वी ही जिनका शरीर है उसको पृथ्वी कायिक जीव कहते हैं, जल ही जिनका शरीर है वो जल कायिक जीव, जल में रहने वाले वो जलचर, वो अलग, ये एकेंद्रीय जीव है, जल इटसेल्फ जीव है। फिर अग्नि कायिक जीव, अग्नि इटसेल्फ जीव है,
जल काय, जल जिसका शरीर है वो जल काय,
जल कायिक जीव
कहते हैं, जल कायिक जीव, तो उसका क्या मतलब है, जल काय में जो जीव है वो जीव या जलचर जो जीव है,
जलचर नहीं, जलचर का अर्थ क्या, जल में रहने वाले, यानी जो मच्छी है, सर्प है, कछुए है,
जल का एक जीव का क्या मतलब,
जल
जल में जो जीव होते हैं वो जल काय में, हाँ, जीव है वो
जिनका शरीर ही जल है।
अच्छा,
यानी कौन सा जल, तो अभी अभी कुएं का जल है, अभी ओस पड़ता है वो है, हा? बारिश गिरती है, ये सब क्या है, वो जल का एक है, जीव है ना, हमें जो दिखाई देता है वो शरीर है उनका, हमें जो दिखाई दे रहे हैं, हाँ,
पसीना क्या होता
है, पसीना जल का एक नहीं जीव,
जीव में से निकला हुआ जल का है,
हाँ उसमें जलक, देखो जल जीव किसको कहेंगे, जो अभी जल कायिक में उत्पन्न होने जा रहा है विग्रह गति में, उसको जल जीव कहेंगे, जब वो शरीर धारण करेगा तो उसको हम जल कायिक जीव कहेंगे, जीव निकल गया, जहां जीव नहीं है मगर जल रह गया, ऐसा भी हो ना, पानी बॉइल किया वहां जल रह गया, वहां जीव निकल गया, तो वो जल रह गया, जल काय कहेंगे उसको। अभी उसके डिटेल में अभी हम नहीं जाएंगे, हर एक में ऐसा लगा सकते हैं, यहां तो हमें मार्गणा क्या क्या है उसकी बात करनी है। तो हम काय मार्गणा की अपेक्षा पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नि कायिक, वायु कायिक, वायु ही जिनका शरीर है वो वायु कायिक जीव है, और फिर वनस्पति काई है। हमें जो दिखाई देते हैं वो उनकी शरीर है, परंतु वहां रहने वाला जीव अलग है। और ऐसे कि इनकी अवगाहन है, इनकी साइज इतनी छोटी है कि बेयर आईज से दिखाई नहीं देंगे। तो हमें तो दिखाई देता है ना, पृथ्वी भी दिखाई देती है, जल भी दिखाई देता है। तो अनेक जीवों के शरीर इकट्ठे हुए, कल हमने देखा ना स्कंद हुआ, स्कंद हुआ नहीं क्या, एक शरीर दूसरा शरीर तीसरा शरीर ये सब ऐसे ये ऐसे जुड़ जाते हैं। जैसे आपने वो प्रवाल का देखा होगा ना, ये कोरल्स वो क्या होते हैं, इतने बड़े बड़े आइलैंड्स हो तो कि एक जीव नहीं अनेक जीवों की कॉलोनीज रहती वहां, तो उनके द्वारा वो बनते हैं प्रवाल यानी कोरल्स। वैसे ये सभी शरीर एक दूसरा तीसरा ऐसे करके ये स्कंद बन जाते हैं और वो हमें दिखाई देते हैं। उसमें तो असंख्यात असंख्यात जीव, कोई एक पर्वत या बड़ा एक वृक्ष एक जीव नहीं है, उसमें अनेक जीव है। ये तो हमने इंद्रिय मार्गणा में स्थावर काय पांच प्रकार के देखे, और एक है त्रसकाय, त्रसकायिक जीव जिसको हम कहेंगे। त्रसकायिक किसको कहना, द्विइंद्रिय वाले, तीन इंद्रिय, चतुरिंद्रिय और पंचेन्द्रिय जीव, तो उनको त्रसकायिक जीव कहेंगे क्योंकि उसके वैसे नाम कर्म का उदय होता है।
अभी आपने जो बताया जलकायिक आदि जीव है, तो उसमें वनस्पति कायिक जीव की जो बात चली, ये भी बताया कि एक झाड़ एक जीव है, एक झाड़ में असंख्यात जीव है। एक झाड़ की तो बात छोड़ो, एक झाड़ का पन्ना है उसमें भी असंख्यात जीव है, एक झाड़ में जो फल है उसमें भी असंख्या जीव है। यानी हम मेथी की भाजी खाते हैं तो एक ही पत्ते में असंख्या जीव है, इसलिए लीलो फ्री भी खाने का निषेध अपने शास्त्रों में बताया। क्यों बताया, क्या मालूम हमारे माँ बाप नहीं खाते थे, हम भी नहीं खा रहे, ऐसा हमें टेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। आगम ने जो कुछ बातें बताई है उसको प्योर रीजनिंग है और जो वैलिड यानी सच्चा रीजनिंग है।
और ऐसा भी है ना, वनस्पति कायिक में ये तो असंख्यात की बात थी उन्होंने की, जैसे कोई ऐसे पत्ते है या फल फूल है, कहाँ संख्यात भी जीव होते कहीं असंख्यात भी रहते हैं, परंतु ऐसी वनस्पतियां हैं जहां अनंत जीव रहते हैं। कैक्टस है जो एलोवेरा, जो दोष आलू प्याज लहसुन गाजर मूली बीट सब में है, क्योंकि उसकी एक एक कटकी के अंदर ऐसे शरीर असंख्यात है और एक एक शरीर में अनंत जीव, कितने अनंत, तीन काल में जितने अनंत सिद्ध भगवान हो गए, सिद्ध राशि जो है उससे भी अनंत गुणा जीव एक निगोद शरीर में, और ऐसे असंख्यात निगोद शरीर बटाटे के एक कटकी में, और वो हम बहुत चाव से खाते हैं, है ना। और कोई नहीं खाता तो हम कहते हैं कौन से जमाने के हैं, पता नहीं हमें, हम कैसे मॉडर्न हैं, हिंसा करने में भी, क्योंकि अपने कारण अपनी जीवालोलुपता के कारण इतने जीवों की हिंसा होती है, इतने उसके कठोर परिणाम है, तो उसको ये बातें शास्त्रों की सुनने से और केवल समझने से कुछ अंदर उसका इफेक्ट होने वाला नहीं, कुछ काम का नहीं है। तो इसलिए मूल में मूल इनका त्याग क्यों, अनंत जीव जहां रहते हैं और हमें पता है यहां रहते हैं और फिर भी हम खाते हैं, यानी हम कितने कठोर परिणाम वाले, ये बात सिद्ध हो।
अहिंसा परमो धर्म, यानी हम अपने विषय लोलुपता के कारण यानी जीवा इंद्रियों की लोलुपता के कारण अनंत जीवों की हिंसा करके अपना भोजन खा रहे। अभी आपको बताए बता दें इतने से कुत्ते में असंख्यात शरीर है, लेकिन शरीर में अनंत जीव, तो हम आलू की सब्जी बनाते हैं मान लो आधा किलो एक किलो कितना भी अपने घर में, तो उसमें कितने जीव होंगे और हम उसके मारने की चाह रखते हैं, हम निष्ठुर है निर्दयी है कौन, और इतना जान कर भी हम अगर खाते हैं उसको तो ईश्वर ही बचाए, बचाएगा कि नहीं।
तो यहाँ केवल ये मोक्ष की बातें करने से और ऐसा ध्यान करने से वैसा ये कुछ नहीं होगा, जब तक ऐसे परिणामों में मृदुता नहीं आती है। जैसे मिट्टी में बीज बोते हैं तो उसको भी सॉफ्ट बनाया जाता है ना, उसकी विधि होती है ना, जमीन जो कसते हैं, तो ऐसे ही पत्थर पर तो बीज नहीं बोते, तो वहां तो बराबर विवेक है कि मिट्टी में बोना चाहिए। ऐसे ही जिसका हृदय कठोर है उसमें ये कितना भी उपदेश सुनेंगे तो ये अंदर कुछ असर करने वाला नहीं।
बोले इतना तो ध्यान रखना ही चाहिए कि कुछ बातों से हम दूर नहीं हो पाते। मान लो कभी हमको नीलोत्री खाने की इच्छा हो रही है, बढ़ रहा है, लेकिन आप पान जो खाते पान पट्टी उसमें भी इतने जीव है, नहीं खाए फिर भी आदमी मरता नहीं है ना। लेकिन हम तो इतना स्पीड बढ़ के खाएंगे फिर वो पान, इससे हम बच सकते। ये हमारी जितनी शक्ति बातें हैं वो हमको बिल्कुल समान होना चाहिए।
यानी ये करने से धर्म नहीं है, वो तो सदाचार है, वो तो सामान्य। जैसे अभी हमने जीवत्व भाव देखा, तो जीवत्व भाव आप में है और वो निगोद में, वो कॉकरोच में, सभी में है। तो हम तो ऐसा है कि हम ही जीव है, बाकी सबको मार देंगे। दुनिया में हमें दूसरा कोई जीव नहीं चाहिए, हम ही हम रहेंगे बस। तो उसके अभिप्राय में सब ये पड़ा है।
यानी हम जब ये करना नहीं का अभ्यास करते हैं या मार्गना देखते हैं तो हमें कितनी नई बातों का ख्याल आता है। हमको एलोवेरा की बात करें ना, वो खाते तो नहीं लेकिन इधर लगा दें उधर लगा दें जैसा करते हैं। हमने तो यहाँ तक सुना उसका आचार भी बनाते खाने वाले हैं लोग। तो यहाँ कहने का मतलब ये है उसका क्या क्या और केमिकल बनता है, कोई जो जिसमें इस्तेमाल करते हैं बाल होने के लिए लगाते हैं, हम कितने निगोटिया जीवों की क्या क्या करते हैं,
अनंत जीवन की हिंसा होती है वहाँ पर।
आगे चलिए।
हाँ देखो ये हम मार्गणा की बात देखे थे, ऐसे ही अलग अलग।
हाँ कौन से नाम तो पूछो कौन से खड़ा बोलो ना फिर हम चिंता।
अच्छा पूरे 14 मार्गणा के नाम बताने बोलो बोलो। हाँ
गति इंद्रिय काय योग वेद कषाय ज्ञान संयम दर्शन वेश्या भव्य सम्यक्त्व संगी और
आहार मार्गणा।
आहार
ये 14 मार्गणा है।
देखो पुनस्था भी 14 ही है, मार्गणा भी 14 ही है और जीव समास 14, हम सब 14 सीखते हैं तो उसके बहुत सारे हैं।
इन्हें ऐसे अलग अलग नाम आते तो घबराने की जरूरत नहीं, ये क्या है उसको समझेंगे तो बहुत आसान हो जाता है। ये तो जीव है, हम कहते हैं अनंत जीव है, कौन कौन से पर्याय में रहते हैं ये उन्हीं की तो बात है। अलग अलग अपेक्षाओं से उनमें कौन कौन सी विशेषताएं, क्या क्या उनके जिसको कहेंगे क्राइटेरिया होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो हमको पता चलता है। तो हमने हाँ नहीं नहीं मैं मार्गणा आगे की बता रही हूँ।
अग्नि भी जीव है इसका भी विश्वास कर रहा है, वनस्पति का एक जीव होते हैं ये तो हमारे जगदीश चंद्र बोस ने कुछ साल पहले मतलब प्रूव किया तब सारी दुनिया मानने लगे। अब हम ऐसा कहते हैं तो सिगरेट पिएंगे तो सिगरेट में अग्नि का एक जीव की कितनी हत्या हो गई, उससे तो हम दूर हो सकते हैं कि नहीं। ये सदाचार है, ये कोई धर्म परम नहीं है। घर में आया तो अपने वृत्ति में कोमलता तो आवश्यक है। अब
हाँ तो मार्गणा हम देख रहे थे, अभी आपने जो 14 मार्गणा बताया उसमें से हमने गति मार्गणा ने 4 गतियां होती है, इंद्रिय मार्गणा में 5 भेद होते हैं, काय मार्गणा में 6 भेद देखे, पृथ्वी कायिक वगैरह सब फिर उसके बाद कौन सी योग मार्गणा, तो मनोयोग होता है, वचन योग होता है, काय योग होता है, अभी योग वेद डिटेल में नहीं जाएंगे। वेद मार्गणा में स्त्री वेद है, पुरुष वेद है, नपुंसक वेद है। कल बात आई थी ना परमात्मा प्रकाश में कि शरीर जो मिलता है कोई ना कोई उसका वेद है वहां पर, और जीव ने अपने को उस रूप ही मान लिया, ये उसकी भूल होती है। तो वेद मार्गणा हुई, फिर कषाय मार्गणा, यानी कोई क्रोध है, क्रोध वाला, मान वाला, माया, ऐसा नहीं कि क्रोधी को क्रोधी ही, ऐसा नहीं है। प्रत्येक जीव में क्रोध, मान, माया, लोभ अल्टरनेटली एक एक अंतर्मुहूर्त में चेंज होते हैं। हम किसी को लेबल लगा देते ये क्रोधी है, ये लोभी है, परंतु उसमें भी ये सभी चारों ही कषायों का परिवर्तन होता रहता है, एक के बाद एक, एक के बाद एक होते ही नियम से होता है। अभी किसी के जो जिसको हम कहते हैं उसका परसेंटेज हिनादिक हो सकता है ना, और माया लोग तो बाहर से दिखाई नहीं देते, क्रोध ये बाहर से दिखाई देता है ना, तो हम लेबल लगा देते हैं, ये यहाँ लगाना क्या क्या है। तो ये हो गई कषाय मार्गणा। फिर उसके बाद ज्ञान मार्गणा। ज्ञान मार्गणा की अपेक्षा हमने भेद देखे थे, पर्याय की अपेक्षा जीवन के भेद देखना है। तो कोई कुज्ञान यानी मिथ्या ज्ञानी, कुमति ज्ञान, कुशुद्ध ज्ञान, कुअवधि ज्ञान, या सम्यक ज्ञान की अपेक्षा मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनपर्य ज्ञान और केवल ज्ञान, ये आठ भेद होते हैं ज्ञान मार्गणा में। फिर उसके बाद संयम मार्गणा। तो संयम में पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा गुणस्थान, उसमें कोई संयम नहीं है तो उसको असंयम कहेंगे, असंयत कहेंगे। पांचवें गुणस्थान वाले का थोड़ा संयम है, थोड़ा नहीं है, तो ये संयम किसको कहना वो देखेंगे। और वह छठे गुणस्थान वर्ती और आगे के कैसे संयमी है, तो संयम किसको कहना। तो संयम है दो प्रकार का, एक है इंद्रिय संयम और एक है प्राणी संयम। इंद्रिय संयम यानी पांच इंद्रिय और मन, इनके जो विषय, उनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे चक्षु इंद्रिय का विषय क्या है तो वर्ण, फिर रसने इंद्रिय का विषय क्या है टेस्ट ले, तो उसमें रचा पचा रहना, उससे विरत नहीं होना, हटना नहीं, यानी उसी की रुचि रहना, तो उसको कहेंगे अविरत है। और उसकी रुचि नहीं रहना, क्यों रुचि नहीं हो रहा, नहीं नहीं आज तुमने त्याग किया है इसलिए आज नहीं खाना, ऐसा नहीं है। जिसको अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद वेदन हुआ है उसको बाह्य विषयों में, बाह्य चीजों में कुछ रस ही नहीं रहता, सहज होता है, उसको जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती अपने पर। क्या कहा, अपने पर जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती, इच्छा ही नहीं होती। और लोगों को लगता है क्यों जबरदस्ती करते हैं, मेरी मोटी दवा है ना, उन्होंने मुझे 20 आपकी बड़ी मामी 25 साल पहले से वो कह दी, तो अपने पर इतनी जोर जबरदस्ती क्यों करती है। मैं नहीं करती, मैं मुझे इन बातों में रस ही नहीं है, जो गहने पहने कपड़े गहने इसमें तो कुछ इंटरेस्ट ही नहीं है। आप कह रहे कि तू खुद पर बहुत जबरदस्ती कर, अभी कैसे बताए उनको। तो कहते ये रस उसमें नहीं लगना और अपने में रस आना, तो उसको कहेंगे विरति। ये मुनियों की अपेक्षा बात चल, क्योंकि समय दृष्टि हुआ तो भी उसके इंद्रियों के यथायोग्य उसके वो घर में रहता है, उसकी बातें चलेगी, परंतु मुनियों के उसमें तो बिल्कुल जरा ही उसमें उनका मन भटकता नहीं है, तो वो इंद्रिय संयम है कहेंगे। प्राणी संयम, अभी हमने जो षटकाय जीव देखे थे, पांच स्थावर और त्रस, इनके हिंसा से वो विरत हुए, क्योंकि अहिंसा महाव्रत का पालन होता है उनका, तो उसको कहेंगे उनके प्राणी संबंधी भी संयम। जिनको ऐसा संयम नहीं है उसको असंयमी कहेंगे। और बीच वाला एक संयम असंयम देखा था हमने, थोड़ा संयम है, थोड़ा असंयम है, यानी क्या, त्रस जीवों की तो हिंसा से बचता है, उसका तो त्याग है उसको, परंतु एक इंद्रियों की हिंसा कौन सी, पृथ्वी अग्नि जल वगैरह, क्योंकि घर में रहता है, रसोई पकानी है, झाड़ू लगाना है, उसमें तो उतनी तो हिंसा तो होती रहती है, उसको टाल नहीं सकता, तो उसको कहेंगे संयम से। ये तो संयम मार्गणा होगी, उसके भेदों में अभी नहीं जाएंगे हम ज्यादा, संयम मार्गणा। उसके बाद दर्शन, अभी जो हमने देखा ना चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, जैसे ज्ञान के भेद देखे वैसे दर्शन, संयम, दर्शन, लेशा। अभी लेशा में जो अलग अलग, मैंने उस दिन वो लेशा के वृक्ष का उदाहरण दिया था ना, आम खाना है तो कोई झाड़ी काटता है, कोई बड़े बड़े डालियां काटता है, और कोई नीचे पड़े हुए आम खाता है, तो वो जैसे डिफरेंस है, इसमें बहुत विस्तार से आने वाली एक एक लेशा के परिणामों की बात। हमें यहाँ केवल मार्गणा क्या है ये देखना है, क्योंकि ये जो सभी बातें गुणस्थानों में और मार्गणा स्थानों में समझाएंगे। अभी हमने जो 53 भाव देखे तो ये कौन से गति वाले को कौन से भाव होते हैं, कौन से गति में क्या क्या पाए, वो सब इंटरेस्टिंग बातें उसमें आ जाएगी। तो ये हो गए मार्गणा स्थान में। अभी हमने कहाँ तक देखा, लेशा, भव्य, भव्य अभव्य की बात अभी हमने देखी, भव्य, फिर सम्यक्त्व। सम्यक्त्व मार्गणा की अपेक्षा, कोई सम्यक दृष्टि है और कोई सम्यक दृष्टि नहीं है, जो नहीं है पहले गुणस्थान वाले, दूसरे वाले, तीसरे वाले, वो तीन भेद। और जो सम्यक दृष्टि है उसमें कोई औपशमिक वाला है, कोई क्षौपशमिक वाला है, कोई शायिक वाला है, वो क्या होता है उसकी चर्चा जब उस भावों की बात आएगी तब अधिक विस्तार से होगी। फिर संगी, संगी यानी वो संगी पंचेंद्रिय, उनको संगी कहेंगे, और जो संगी नहीं वो असंगी, सारे कौन से, एक इंद्रिय, द्विंद्रिय, तीन्द्रिय, चतुरिंद्रिय और असंगी पंचेंद्रिय, इनके मन नहीं है। और हम आप कैसे मन वाले हैं, मन के द्वारा यहाँ जानने का कार्य करते हैं, तो हम संगी जीव हैं। फिर आहार, यानी जो शरीर के परमाणुओं का ग्रहण चलता रहता है उसको आहारक कहेंगे, और जब एक गति से मरकर दूसरी गति में जाता है, बीच में एक दो समय के लिए किसी किसी के वो अनाहारक, वो मोड़ से जाता है तो उसको अनाहारक कहेंगे। तभी शरीर का ग्रहण नहीं है, कर्म का ग्रहण तो सदैव चलता है। इस तरह मार्गणा के भेद है। अभी तो केवल इसके नाम हमने सुने हैं, तो गुणस्थान और मार्गणा स्थान समझने से क्या, तो ये जीवों के अलग अलग भेद है, उन भेदों की अपेक्षा कहाँ कौन से भाव है उसकी चर्चा जब आएगी तब वहां करेंगे। तो यहाँ हम फिर बढ़ेंगे। जीवत्व भाव तो, अब ये तो आसान है ना, जीवत्व भाव कौन सी गति वालों के होगा प्रभाव है, नारकी वालों, नारकी जीवों को होगा कि देवों के होगा कि मनुष्यों के होगा, मनुष्यों को होगा, सभी जीवों को, क्योंकि हमने क्या देखा, जीवत्व किसको होता है, जीवत्व के कारण हम जीव नाम दिया हमने, तो ये सवाल ही नहीं कौन से जीव को होता है। जो कोई जीव है, निगोद का हो या सिद्धों का, तो उसमें जीवत्व भाव है, जीवत्व भाव के बिना कोई भी जीव नहीं है। इसमें जीवत्व भाव होगा कि नहीं होगा, नहीं, ये तो पुद्गल का स्कंद है, है? इसमें नहीं है।
वो जो झाड़ दिखता है उसमें जीवत्व भाव है कि
आत्मा के प्रदेश,
आत्मा के प्रदेश सब जगह ये तो बहुत सीखे नहीं, जो दिख रहा है झाड़ उसमें जीवन भाव है कि नहीं, क्या मतलब ये सही कह रहे,
क्या दिख रहे हैं, जो दिख रहा है वो पुद्गल है, ये इसीलिए बार बार पूछ रहे, जो दिख रहा है, जो दिख रहा है,
आत्मा दिखता है क्या, देखा होगा आपने,
ऐसा कहना है वहाँ जो वनस्पति का एक जीव है ना, उसमें जीवत्व भाव वनस्पति में है, तो दिख रहा है ना, उसकी बात पूछ रहे थे। हाँ देखो देखो, अभी हम यहाँ फिर पढ़ेंगे। जीवत्व भाव तो सर्व गुणस्थान और सर्व मार्गणस्थान विषय वाह का अर्थ होता है, और सिद्ध भगवान पर्यंत पाई है, जो हमें दिखाई दे रहा है ना, जो वृक्ष दिखाई दे रहा है वो तो पुद्गल है, क्योंकि उसमें स्पर्श रस गंध वर्ण हमको समझ में आ रहा है ना, तो हाँ तो वो तो पुद्गल है, और वो तो उस जीव का शरीर है, जैसे ये मनुष्य शरीर है, इस शरीर में कोई जीवत्व भाव नहीं है, परंतु यहाँ जो मैं स्वयं हूँ मुझ में जीवत्व भाव है। हाँ वो नहीं, दोनों वो आत्मा में जीवत्व है, वो दोनों सुपर इम्पोज है, दोनों ही सुपर इम्पोज है, आत्मा अलग है, यहाँ रहते हुए भी आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, दोनों ऐसे रहते एक में, एक ही है, आत्मा के प्रदेश है, तो जीवत्व भाव आत्मा के प्रदेशों में है, पुद्गल के प्रदेशों में नहीं है, एक ही स्पेस में दोनों रह रहे, हाँ नहीं नहीं यहाँ दोनों ही रह रहे, सब है, उसके अपना अपना भाव है, ख्याल में आएगा। देखो फिर हम पढ़ते हैं इसको, जीवत्व भाव तो सर्व गुणस्थान और सर्व मार्गणास्थान विषय और सिद्ध भगवान पर्यंत पाई है। ये सिद्धों को अलग से क्यों बताया अरविंद भाई,
सिद्ध भी जीव है ना,
हाँ तो
उसमें भी जीवत्व है,
तो पहले उसमें आ गए ना सब गुणस्थान मार्गणास्थान,
हाँ
देखो ये गुणस्थान और मार्गनास्थान संसारी जीवों के भेद हैं। चौदह गुणस्थान के बाद सिद्ध पर्याय होती है और मार्गनास्थान में भी हम सिद्धों को नहीं गिनते, उनको सेपरेटली बताते, इसलिए और सिद्धों में भी है। वाक अर्थ अथवा नहीं, वाक अर्थ है और, ये ढंडारी भाषा में वाक अर्थ होता है और एंड। क्या मार्गणाओं में नहीं, क्योंकि हम संसारी जीवों के भेद करेंगे उसको गुणस्थान और मार्गनास्थान कहेंगे, और यहाँ ये जीवत्व भाव संसारी जीवों में भी है, यानी सर्व गुणस्थानों में है और सिद्धों में भी है, है जीवत्व भाव। सिद्ध भगवान जीव है कि नहीं है, तो जो जो जीव है उसमें जीवत्व भाव है। आप जीव हो कि नहीं? हाँ है ना,
दिखता है उसमें।
अरे भव्यत्व भाव, अभी देखो भव्यत्व भाव, तो भव्य कौन कौन से गुणस्थानों में हुआ देखो, सर्व गुणस्थान तथा सर्व मार्गनास्थान विषय पाई। तो मिथ्या दृष्टि जो है गुणस्थान, उसमें भव्य जीव होंगे कि नहीं होंगे, है ना, क्योंकि वो तो अनादि जब हाँ भव्य यानी होने योग्य है, वो सब चौदह गुणस्थान तक वो भव्य कहेंगे हम उसको, इसलिए कहते सभी गुणस्थानों में और सभी मार्गनास्थानों में पाई है। यानी कोई अभी निगोद में पड़ा है जीव, वो आलू में है, वो भी भव्य है, वहां से निकलेगा कोई मनुष्य होकर मोक्ष भी चला जाएगा वो खाने वाले के पहले। और अभव्य तो भाव, अभी देखो सोचकर बताना, तो अभव्यों के गुणस्थान कौन कौन से हो गए, आपको अभ्यास है गुणस्थान का? नहीं, पहला ही। आप क्या कहते हैं, आगे लिखा है? अच्छा, अभव्यत्व भाव, क्योंकि वो कभी सम्यक्त्व भी नहीं प्राप्त करेंगे, तो दूसरे तीसरे में भी वो तो सम्यक दृष्टि जो होता है ना, कभी गिर कर आता है तो दूसरा तीसरा प्राप्त होगा। मैंने दूसरे तीसरे की बात नहीं बताई थी आपको, पहला गुणस्थान से डायरेक्ट चौथे की बात की थी, तो जो चौथे में ही नहीं जाएगा तो दूसरे तीसरे में भी नहीं आ सकता, ये बात नक्की हो गई ना। यानी अभव्य जीवों का एकमात्र पहला गुणस्थान अभव्यत्व भाव। गुणस्थान तो प्रथम मिथ्यात्व गुणस्थान विषय ही पाई है, उसका नाम है मिथ्यात्व गुणस्थान। मार्गनास्थान में योग मार्गना विषय तो आहारविक और ज्ञान मार्गना विषय मति श्रुतावधि मन परे केवल ये पांच, देखो देखो ये अभव्यत्व भाव कहां नहीं होता उसकी हम बात करेंगे। अभी उनको कहना है, वो जो कहना है वो हम बाद में पढ़ेंगे, पर हमने जो मार्गना देखी ना उसमें देखेंगे गुणस्थानों में कहां होता है पहले में, कहां नहीं होता बाकी कहीं पर भी नहीं होता। अभी हम मार्गणाओं की बात करेंगे, पहली मार्गणा गति मार्गणा, तो अभव्य जीव कौन से गति में हो गए कौन से गति में नहीं हो गए, बोलो नितिन भाई, अभव्य जीव कौन से गतियों में पाए जाते कौन से गतियों में नहीं पाए जाते, आप बताएंगे? हाँ, चारों गतियों में पाए जाएंगे, चारों गतियों में पाए बराबर, ऐसा कोई नहीं कि वहां केवल भव्य जाए, ऐसा कुछ नहीं। फिर इंद्रिय, तो अभव्य जीव कौन से इंद्रिय वाले हो गए, क्या एक इंद्रिय में हो गए कि पंच इंद्रिय में हो गए कि हाँ सभी में हो गए, तो उसमें भी पाए जाएंगे। काय, कौन से काय वाले हो गए, पृथ्वी काय वाले हो गए कि त्रस्काय, सभी हो गए। योग, अभी योग मार्गना में, योग मार्गना में मनोयोग वाले हो गए कि नहीं, अभव्य हो सकते। वचन योग, हाँ हो गए क्योंकि पंच इंद्रिय तक के उनके पर्याय पाई जाती है। काय योग में औदारिक काय योग वाले हो गए कि नहीं, यानी मनुष्य तीन इंच होते हैं उनके औदारिक काय योग होता है वो भी हो गए। देवनारकी उनके वैकिरेक होता है वो भी होगा, परंतु ये जो आहारक काय योग है वो मुनियों के होता है, तो अभव्यों के वो नहीं होगी बात। तो यहाँ क्या लिखे, योग मार्गना विषय तो आहारक द्विक, यानी आहारक और आहारक मिश्र, ये दो काय योग अभव्यों के नहीं होगी, बाकी अन्य सभी योग उनके हो गए। धन्यवाद। अब ज्ञान मार्गणा में कौन कौन से ज्ञान उनके नहीं पाए जाएंगे, तो सम्यक ज्ञान उनको कभी नहीं होगा, तो मति शुद्ध अवधि मन परि और केवल ज्ञान उनके नहीं पाए जाएंगे। अब संयम मार्गना में असंयमी तो वो है ही, पैंथा तो गुण स्थान में है अभव्य जीव, तो उनके कभी संयमा से मैंने पांचवा गुण स्थान नहीं होगा। संयम के जो अन्य भेद है वो भी उनके कभी नहीं होंगे। तो कहते छह संयम यानी वो असंयमी ही रहेंगे, अन्य जो भेद है हमने जो डिटेल में नहीं देखा है उनमें वो नहीं जाएंगे। दर्शन मार्गणा में चक्षु दर्शन अवचक्षु दर्शन तो रहेगा, परंतु अवधि दर्शन जो समय दृष्टि उनके उत्तर केवल दर्शन इनके कभी नहीं होगा। तो अवधि और केवल ये दो दर्शन, और भव्य जो अभव्य वो तो भव्य है ही नहीं। और सम्यक तो मार्गणा में मिथ्या तो बिना पांच सम्यक, पांच सम्यक का अर्थ क्या है हमने पहले देखा था, जो समय दृष्टि नहीं है वो पहले दूसरे तीसरे गुणस्थान वाले हैं। तो मिथ्यात्व में तो ये है सासाधन और सम्यक मिथ्यात्व, इसको कभी नहीं होगा, और इसको सम्यक तो भी कभी नहीं होगा, ना औपशमिक होगा ना क्षौपशमिक होगा ना क्षायिक होगा, तो ये अन्य सभी सम्यक तो उसको कभी नहीं होगा। इन 21 स्थानों के विषय तो न पाइए अभव्य जीव के, इन ये बातें नहीं होगी। अभी हमने क्या देखा आहार का योग वगैरह उसके नहीं होगा, है ना, अभी हमने ये सब गिने ना। हर एक मार्गणा में अभव्य जीवों को क्या क्या नहीं होता उसकी बात देखी, क्यों, क्योंकि उसको सम्यक दर्शन ही नहीं होता, इसलिए उसको ये सम्यक ज्ञान के भेद नहीं होंगे, उसके संयम असंयम और संयम नहीं होगा, ये इस तरह से अप्लाई करना है। नहीं अवधि दर्शन नहीं होता उसको, अचक्षु दर्शन पूर्वक होता है, विभंग ज्ञान जो है उसमें अवधि दर्शन नहीं बताया। कोई भी है जहाँ जहाँ विभंग ज्ञान है वहाँ तो वो एक को अवधि ज्ञान के साथ वो अवधि दर्शन को नहीं लेना है। तो कहते अवशेष सर्व मार्गना स्थानक न विषय अभव्य तो भाव पाई है, कहाँ नहीं पाया जाता हमने देखा, और कहाँ पाया जाता वो भी हमने देखा कि चारों गतियों में है, सभी इंद्रियों वालों में है, हमने देखे ना अभी, इनको छोड़कर अन्य सभी अभव्य पाए जाते हैं। इति श्री भावदीपिका ग्रंथ विषय द्वितीय पारिणामिक भावाधिकार पूर्ण हुआ। इसमें जीवत्व भव्यत्व और अभव्यत्व की चर्चा उन्होंने की। नीचे के पढ़ना है क्या, आगे बढ़ेंगे क्योंकि ये आत्मावलोकन की भाषा थोड़ी कठिन है। अभी तीसरा अधिकार कर्माधिकार है। आपको ये कर्मों के नाम सुबह पूछते हैं ना बार बार प्रभावे, यहाँ सभी चर्चा आएगी, कौन से कर्म है क्या है उसकी बातें बताएंगे अभी हम। ये जो है पंडित दीपचंद जी कासलीवाल ने अन्य भी पुस्तकें लिखी हैं, तो उनका एक आत्मावलोकन नाम का ग्रंथ है, तो उसमें आत्मा के अनुभव की यानी स्वानुभव की दशा का वर्णन किया है। तो ये इस पुस्तक का अंश नहीं है, इसको हम छोड़कर आगे बढ़ें। तो यह हम तीसरा अधिकार पढ़ेंगे, पृष्ठ संख्या है 10, मंगलाचरण से शुरू करते हैं। कर्मज भाव अभाव करी सिद्ध कियो स्वैभाव, तीन पद न विविध कथन को करूं चित्त दरिचा। कर्मज भाव, ज लगाते ना यानी उससे उत्पन्न हुए उसको ज लगाते, ऐसा कोई शब्द मालूम है ज वाला? निदान, हाँ गर्भज, हाँ सरोज, जलज, पंकज, पंकज किसको कहते हैं, कमल को, क्यों, वो पंक यानी चिखल कीचड़ उसमें उत्पन्न होता है, वो पंकज कहते हैं। ये ज शब्द लगाते हैं। अनुज शब्द सुना है कि नहीं, हाँ छोटा छोटा अनु यानी फॉलो करने वाला, अग्रज ने पहले वाला, तो ज ने उससे उत्पन्न हुआ भाव, तो कर्मों के उदय से उत्पन्न हुआ भाव को कर्मज भाव कहा। तो इनमें से कौन कौन से भाव हो जाएंगे, औदयिक है हाँ, ये सब कैसे कर्मज कहेंगे हाँ। तो कर्मज भाव अभाव करी, यानी कर्म से उत्पन्न हुए भावों का अभाव करके सिद्ध कियो स्वयं भाव, स्वयं यानी स्वीय भाव बताया था ना अपना भाव स्वभाव भाव जिन्होंने सिद्ध किया है यानी प्रकट किया, पर्याय में प्रकट किया है। जैसा हमारा स्वभाव कैसा है, तो पूर्ण वितराग और सर्वज्ञ हमारा स्वभाव है, यहाँ पूरी सामर्थ्य पड़ी है और वो हमने पर्याय में प्रकट की, तो यहाँ क्या किया सिद्ध कियो स्वयं भाव। तीन पद नमी, उस पद को नमन करके, कौन सा पद है ये सिद्ध पद, पांच परमेष्ठियों ये पद है ना, कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, इन पदों को हम नमस्कार करते हैं, उनका स्वरूप हम ख्याल में लेकर ज्ञान में लेकर उसके प्रति हमें आदर भाव उत्पन्न होता है, तो उस पद को नमस्कार करके विध कथन को मिली भाई, विध कथन यानी क्या, कर्म को विधि कहते हैं, आया था यहाँ विधा आया तो गड़बड़ी हो गई हाँ? यानी कर्म के कथन को करू चित्त धरी चाव, कथन को करू चित्त धरी यानी मन में उत्साह उमंग धर के उसका वर्णन करते हैं। अथ अनंतर यानी अब इसके पश्चात कर्माधिकार लिखिए है, कर्म संबंधी अधिकार लिखते हैं। जाते ही अब कहेंगे जो पचास भाव है, क्या कहे अब तक कितने भाव बता चुके, तीन पारिणामिक भाव, उनमें पहले बताया था ये कर्म की अपेक्षा से रहित भाव है, उसमें कर्म का उदय है कि उपशम है कि क्षय है ऐसे कोई अपेक्षा नहीं लगती है, वो जीव का स्वभाव भाव है, अनादि से है, किसी कर्म के कारण नहीं है, वो अपना भाव है उसका और कायम रहने वाला, और एक समान जैसा एक जैसा है, अनादि का वैसा है, उसको तो हमने देख लिया है पारिणामिक भाव को, जीवत्व की अपेक्षा वैसा का वैसा कह दिया हमने।
यहाँ पे बताया है पहले तीन भाव छोड़कर पचास की बात करेंगे, आपने अभी जो बताया कि ये जो तीन भाव है इसके कोई निमित्त नहीं है, हम बोलते ना ये अभव्य क्यों हुआ, कौन सा कर्म किसने किया, किस कर्म के कारण से वो अभव्य हुआ, तो नहीं ये कर्म उसमें निमित्त है ही नहीं, बाकी के जो पचास भाव भी हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें कर्म निमित्त है, इसलिए जीवत्व में भव्यत्व में या अभव्यत्व में कोई कर्म उसमें निमित्त नहीं है, कर्म के कारण वो भाव हुए नहीं है, वो तो जीव का स्वभाव है, जीवत्व ये द्रव्य स्वभाव है और भव्यत्व अभव्यत्व पर्याय स्वभाव है। आगे
तो ये जो पचास भाव है वो तीन छोड़कर, त्रेपन में से तीन छोड़े, ये जो पचास भाव है क्योंकि ये पर्याय में होने वाले भाव है और वो तो स्वभाव था, ते सर्व यानी वो सभी पचास के पचास कर्म की सापेक्षता से उत्पन्न है तो जीव में ही उत्पन्न होते हैं, परंतु वहाँ कर्मों की सापेक्षता है यानी उसके वो तो वहाँ निमित्त बताया जाता है, उसकी उपस्थिति है बस, उसकी विशिष्ट अवस्था वहाँ प्रेजेंट है, वो जीव के भाव उत्पन्न कराते ऐसा नहीं कहा। तातई कर्मनिका कछु यह कथन करिए है, इसलिए कर्मों का भी यहाँ कथन चलेगा, ये कर्म हमारा कुछ बिगाड़ते हैं या वो बलवान है इसलिए नहीं, उसकी सापेक्षा उसकी रिलेटिविटी वहाँ पाई जाती है, तो इसलिए उसको जानने के लिए उनका भी यहाँ कथन होगा, क्योंकि उनकी भाषा में समझाएंगे, कर्म की जो यहाँ विशिष्ट अवस्थाएं बताई जाती है वो जीव के परिणाम को ही बताने वाले हैं, परंतु हम कर्मों की अवस्था की भाषा में जीवों के परिणामों का वर्णन करेंगे, बाकी चर्चा हम सोमवार को करेंगे, अभी तो समय हो गया।
जावानी के ज्ञान ते सूजे लोकालो सोवाणी मस्तक नमो सदा।